ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगणललितम् साद्वैतं सार्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्रीराधां कृष्णमालां सहगणललिता श्रीविशाखामृतां च
हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत शिवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं यदज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति सभ्यते। भगवान् के तीन आस्पेक्ट हैं, स्वरूप हैं। ब्रह्मेति ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म ये भगवान का पहला आस्पेक्ट है, ऑल परवेसिव नेचर ऑफ द लॉर्ड। भगवान अणु अणु में, कण कण में समाये हैं, प्रसरे हुए हैं, ये ब्रह्म। सो ब्रह्म ये ज्ञानी लोग का विषय है। सर्वेदम इदम खल्व ब्रह्म, सब ब्रह्म है। भगवान भी ब्रह्म और हम भी ब्रह्म, बात सही है, लेकिन हम छोटे ब्रह्म हैं, वो विभू ब्रह्म है। परम ब्रह्म, हम ब्रह्म हैं, भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है। सो हम मंत्र का वो अध्ययन करते हैं, सो हम मंत्र का उपयोग करते हैं। सो हम, आप भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, भगवान भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, बात सही है, लेकिन हम अणु हैं और वो विभु हैं। ब्रह्म सच्चिदानंद, हम सच्चिदानंद हैं, भगवान भी सच्चिदानंद है, क्वालिटी गुण एक है, लेकिन कद बहुत बड़ा तफावत, हम छोटे से छोटे, वो बड़े से बड़े, और वो छोटे से छोटे भी भगवान को लिमिटेशन नहीं की जाती, भगवान छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, अन्यो अन्यात महतो महियात, भगवान अणु से भी छोटे और महत महतो महियात, महत से भी महान। तो ये ब्रह्म की उपासना ज्ञानी लोग करते हैं और ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, और ब्रह्मलीन होते भी हैं। ब्रह्म है भगवान का प्रकाश है, आभा है, प्रभा है, भगवान के दिव्य स्वरूप में से जो प्रभा निकलती है, ये ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति। तो ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं और वहां कोई एक्टिविटी कार्य कलाप नहीं होने से वो ज्यादातर ब्रह्म की स्थिति में, ब्रह्म में स्थिर नहीं रह सकते। इसीलिए भागवत कहता है आरुह्य कुच्छेन परम पदम पतंति अद अनादृत्य अस्मात्। आरुह कृच्छ, कृच्छ ये बहुत बड़ा कड़ा व्रत है, कृच्छेन तप व्रत, तो व्रत ऐसा कड़ा व्रत करके ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होते हैं जरूर, और ये आध्यात्मिक भी है, भौतिक नहीं है, लेकिन वहां कुछ कार्यकलाप न होने से, किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, और जैसे सूर्य के रजकण में, सूर्य के प्रकाश में रजकण इधर उधर घूमते रहते हैं, वैसे आत्माएं ब्रह्म ज्योति में इधर उधर घूमते रहते हैं, और अंत में कार्यकलाप न होने से, कोई संग न होने से वो वापिस गिरते हैं, पतंती अधा नीचे गिरते हैं, पतंती अधा अनादृत्य। तो ये ब्रह्मवादियों की गति है जो भक्तों के लिए इच्छनीय नहीं है, किसी के भी लिए इच्छनीय नहीं है। ब्रह्मवादी ज्यादातर लोनर, अकेलेपन में पसंद करते हैं, ध्यान करेंगे अकेले, और वो भी नीचे गुफा में जाके अकेले अकेले घूमेंगे, अकेले सब कुछ अकेला, अकेलेपन में कोई रस नहीं आता। आपको अकेलेपन में छोड़ दे, एक कोठरी में खान पान की व्यवस्था हो और आपको वहां छोड़ दे, अकेले रहो, तो ये ब्रह्म वादियों की गति। और ट्रेनिंग भी ब्रह्मवादी जो होते हैं उसको मायावादी, ज्यादातर मायावादी कहते हैं। मायावादी की परिभाषा है कि जो भगवान श्री कृष्ण राम नारायण विष्णु उनका शरीर उनकी क्रिया उनकी लीला उनके गुण धाम नाम सबको माया जैसे मैं हूं वैसे वो है माया समझते हैं। जैसा मेरा शरीर है वैसा भगवान का शरीर। मेरा शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का, तो भगवान श्री कृष्ण का शरीर भी किस चीज का बना है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तो ये भूल है। भगवान श्री कृष्ण राम नारायण विष्णु का शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का नहीं है। हमारा शरीर माया का बना है, माइक तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तो हम ऐसा ही समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राम उनका शरीर भी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का माया। हमारी क्रियाएं माया है तो भगवान की क्रिया भी माया, तो इसको मायावाद कहते हैं। जैसे रामचंद्र भगवान ने, कई लोग कहते हैं कि वाली को ऐसे टेढ़े मेढ़े पन में मारा इसीलिए उनको ये बात हुई। कहते न जानू जानकी नाथे काले सूत हवानू छे। जानकी नाथ श्री रामचंद्र ने ये नहीं जाना कि कल उनका वनवास होगा या कल उनका मुकुट मिलेगा, राजमुकुट न जाने। उनकी भगवान राम कृष्ण की लीलाओं को भी माया जानना, गोपियों के साथ उनका व्यवहार माया का था। गोपी प्रेम की प्रतीक है। गोपियां गोपी भाव का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण को सुख देना, उनको बोलते हैं गोपी भाव। तो गोपियों के साथ भगवान की लीला माया कैसे हुई? ऐसी गोपियां जो भगवान को सुख देने के लिए तत्पर हैं, भगवान को कोई विकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने राज रचाया करोड़ों गोपियों में, गोपियों के बीच में, लेकिन व्यासदेव ने लिखा कि उनमें कुछ विकार नहीं आया, कुछ भी विकार नहीं भगवान में। और अंत में यह भी लिख दिया कि ये जो भगवान की लीला है गोपियों के साथ पंच रास अध्याय, ये लीला को जो हर रोज सुनेगा गाएगा उनका काम खत्म हो जाएगा, उनका काम नष्ट हो जाएगा। तो ये भूल, ये माया है। क्या माया है? कि भगवान की लीलाओं को माया समझना, भगवान के शरीर को भी माया समझना, भगवान के नाम को भी माया समझना, उनके धाम को माया समझना, तो इसको बोलते हैं मायावादी। मैं हर बार कहता हूं हर लेक्चर में, क्यों याद आता है पता नहीं, लेकिन जब मैं वैनकूवर कनाडा में था तो वहां विश्व हिंदू परिषद में एक प्रचारक आए थे, भगवा कपड़े हैं सब कुछ, मायावादी सन्यासी। उनका स्टेटमेंट था कि हमारा धर्म सनातन धर्म है और सनातन रहेगा और सनातन है। ये राम और कृष्ण आएंगे और जाएंगे उससे हमारा धर्म का कोई भी मतलब नहीं है, सनातन धर्म है। लेकिन ऐसे मूर्ख लोग ये नहीं समझते कि धर्म धुरंधर ही राम कृष्ण है, धर्म के रक्षक कृष्ण है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि हम। धर्म की ग्लानि होती तो कृष्ण तुरंत भागते हुए आते हैं। धर्म किम शरणम व्रज, भागवत का श्लोक है, कृष्णे स्वधाम उपगति। जब कृष्ण भगवान स्वकाष्ठाम उपेयात, अपने धाम में चले गए भगवान श्री कृष्ण। धर्मम क शरणम व्रज, किसके शरण में गया धर्म? तो भगवान जब थे तो धर्म उनके शरण में था, और जब भगवान चले गए तो भागवत के धर्म, भागवत के शरण में धर्म रहा। तो ये लोग नहीं, मायावादी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कृष्ण राम क्या है, राम और कृष्ण क्या है, नारायण विष्णु क्या है। मायावादी लोग नहीं समझ सकते, वो ब्रह्म की उपासना करेंगे, इम्पर्सनल अव्यक्त स्वरूप की उपासना, अव्यक्त। ब्रह्म का उपासक अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं। भगवान को स्वरूप नहीं, शरीर नहीं, आकार नहीं, निराकार है, निर्गुण है। वो लोग भगवान को निराकार इसलिए बनाते हैं ताकि भगवान को सरेंडर नहीं करना है, शरणागति नहीं स्वीकारना है। अगर भगवान व्यक्ति होंगे तो उनका शरण, उनकी शरणागति स्वीकारनी पड़ेगी। लेकिन ये शरणागति में सुख है, भगवान की शरणागति में सुख है। सर्वतर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान गारंटी देते हैं कि आपको मेरे शरण में आ जाओ, बाद में आपको कुछ करना नहीं रहता। माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, बाद में मैं सब कुछ कर लूंगा, एक शरण स्वीकार। लेकिन ये मायावादी लोग, इम्पर्सनलिस्ट, अव्यक्त की उपासना वाले, निराकार की उपासना, निरंकारी, तो इन लोगों को जो उत्तम उन्नत उज्ज्वल रस है उनका आस्वादन नहीं मिल सकता। उनका पतन होता है। गीता में अर्जुन सवाल कर रहे हैं, क्या सवाल करते हैं कि के में योग वित्तमा, कि जो व्यक्त स्वरूप की और अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं उसमें कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं क्लेशो अधिक तरस तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अव्याप्यते। देहधारियों के लिए अव्यक्त स्वरूप की उपासना दुखदायी होती है। अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, उनकी गति दुखदायी होती है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अव्याप्यते। तो भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति हैं, भगवान को व्यक्तित्व है, भगवान की कोई भी चीज माया नहीं है, कोई भी चीज माया नहीं है। लेकिन मायावादी श्री कृष्ण राम की सब चीजों को माया कहते हैं। उनका मृत्यु हुआ, भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु हुआ, जो सिका हंटर था, हंटर या शिकारी, उनने तीर लगाया भगवान श्री कृष्ण के पांव में, तो भगवान कृष्ण मर गए। ये बिल्कुल बेकार की बात है, गाली दे रहे हैं भगवान को, बेकार की बात है। अगर आपके या कुत्ते के पाँव में मैं अगर तीर लगाऊं तो आप नहीं मरोगे तो कृष्ण भगवान कैसे मरेंगे? कौन सा लॉजिक है? आपके पाँव में अगर तीर लगाए तो आप मर जाओगे, कौन मरेगा? भगवान स्वदेह अपने धाम में वापस गए हैं, अवतरित स्वदेह। भगवान का देह और भगवान के आत्मा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मायावादी ये समझते हैं कि मर गए, उनका जन्म हुआ। जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण चार हाथ वाला, 8 फुट लंबा, केसधारी, मुकुटधारी, 4 हाथ वाला अपना स्वरूप दिखाया। भगवान श्री कृष्ण विष्णु का स्वरूप दिखाते हैं, विष्णु से श्रेष्ठ हैं, लेकिन विष्णु भगवान ने कभी भी कृष्ण भगवान का स्वरूप नहीं दिखाया। तो ये है कि भगवान जन्म लिया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मैं जन्म और कर्म से दिव्य हूं, परे हूं, मेरा जन्म आत्मा का जन्म नहीं है और आत्मा का मरण नहीं है तो श्री कृष्ण परमात्मा का कैसे? तो ये मायावादी नहीं समझते, तो ये मायावादियों की गति है। क्या गति है? ब्रह्मलीन, लिखते हैं पिक्चर के नीचे ब्रह्मलीन, ऐसा लिखते हैं। तो इन मायावादियों की गति दुखदाई है और फिर से गिरते हैं और यहाँ आके फिलेंथ्रोपिक वर्क, जो पुण्य कर्म, स्कूलें खोलना, हॉस्पिटलें खोलना, ये सब पुण्य कर्म करते हैं, क्योंकि उनको कोई एक्टिविटी नहीं वहाँ ब्रह्म में, प्रकाश में, ब्रह्म ज्योति में, आभा प्रभा भगवान की जो है। तो यह ब्रह्मेति, और बाद में भगवान का, और ब्रह्म में रियलाइजेशन क्या होता है? सत, भगवान का सच्चित आनंद विग्रह है भगवान, तो सत का हम अनुभव कर सकते हैं, एटर्निटी, सनातन, सच्चित ब्रह्मेति परमात्मेति, परमात्मा। ये भगवान का थोड़ा एडवांस एस्पेक्ट है परमात्मा। हमारे हृदय में 4 हाथ वाला जो स्वरूप है, विष्णु स्वरूप, क्षीरोदक्षय विष्णु, तो ये परमात्मा हमारे हृदय में है, उनका योगी ध्यान करते हैं, योगी लोग। और ध्यान करते करते हुए योगियों को मैस्टिक सिद्धि, सिद्धियां प्राप्त होती है, अणिमा लगीमा प्राप्ति सिद्धि, वसीता इसीता सिद्धि, ये सब सिद्धियां 8 सिद्धियां हैं। तो योगी ये सिद्धियों में बहुत बड़ा अहंकारी हो जाता है, मैं अहंकार, मुझको सिद्धि प्राप्ति सिद्धि, कहीं से भी गोल्ड या तो प्रोमिग्रेनेट को भी लाके आपको हाथ में दे देंगे सिद्धि, और आप उनको समर्पित हो जाओगे, ओ ये कोई भगवान है। मदारी होता है, मदारी वो भी कई कई सिद्धियां, मुंह में से इतना बड़ा पत्थर निकालता है, इससे वो परमात्मा नहीं बन जाता। तो ये सिद्धियां, पर सिद्धियां वो योगी लोगों को प्राप्त होती है, आपका कोई रोग हो तो मिटा सकते हैं। सूर्य के किरण से सूर्य तक पहुंच सकते हैं योगी लोग, वसीता इसीता। तो ये सिद्धियां से योगी बहुत अहंकारी बन जाता है और भगवान बन जाता है, मैं भगवान हूं, हृदय में ध्यान करते हैं योगी लोग परमात्मा का। तो योगी लोग भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, वो सत और चित दोनों का अनुभव जरूर करते हैं। और ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सभ्यते, भगवान आखिरी में जो उच्चतम जो रियलाइजेशन है, उच्चतम आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार जो करते हैं वो भक्ति योगी है। भगवान इति सभ्यते, भगवान का वो ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, भक्त भक्ति, तो भगवान को वो पामते, भगवान का धाम प्राप्त करते हैं। तो भक्ति योगी है श्रेष्ठ योगी, भक्ति योग है श्रेष्ठ योग है, क्योंकि भक्ति से भगवान बद्ध जाते हैं, भक्ति से भगवान भक्त की ओर आकर्षित होते हैं, इतने आकर्षित होते हैं कि भक्त के बिना भगवान रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। और ओरिजिनल स्वरूप भगवान का जो है वो व्यक्त रूप में भगवान श्री कृष्ण, ये ओरिजिनल स्वरूप है, ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वो कृष्ण है। और परमात्मा और ब्रह्म ये कृष्ण भगवान के एस्पेक्ट है विस्तार। तो आइए हम भगवान कहाँ है, कहाँ रहते हैं और कौन है, हमने देख लिया कल और आज थोड़ा सा, लेकिन कहाँ रहते हैं, उनकी सृष्टि क्या है, सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। तो भगवान सृष्टि की रचना क्यों करते हैं, क्योंकि उनको इच्छा होती है, उनको इच्छा होती है, क्या इच्छा होती है, एको अहम बहुश्याम, मैं एक अकेला हूं, मैं बहु बनना चाहूंगा, एको हम वेद वाक्य है, एको हम बहुश्याम। तो ऐसी इच्छा क्यों की भगवान ने, तो भगवान ने ऐसी इच्छा इसलिए की कि अनेक रस, रसो वै सह, भगवान रसेस हैं, रस के ईश्वर हैं, रसिक हैं, भगवान रंग रसिक हैं। और रस का आस्वादन करने के लिए अकेलेपन में आस्वादन नहीं हो सकता, दो होने चाहिए या बहु होने चाहिए, अकेलेपन में क्या आस्वादन करेंगे, कोई दो है तो मित्रता या पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई भी पिता पुत्र पुत्री, तो उसमें रस का आस्वादन कुछ हो सकता है, लेकिन अकेलेपन में क्या आस्वादन। तो भगवान ने इच्छा की कि मैं एक हूं, और भगवान को रस लुटाने के लिए दो बनने की जरूरत नहीं, अपने आप में आत्मा राम है भगवान, अपने आप में रमण करने वाले हैं, लेकिन इच्छा हुई, भगवान इच्छा कर सकते हैं, जैसे हम इच्छा करते हैं, हमारी इच्छा भगवान में से आती है, भगवान इच्छा करते हैं तो हमको भी, हम भगवान के अणु अंश हैं, इसलिए भगवान में जो है वो हम में है, जैसे भगवान वैसे हम, मनुष्याकृति भगवान है, भगवान मनुष्य भगवान आकृति है, दोनों। बाइबल भी कह रहा है कि मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, मनुष्य भगवान की इमेज में बनाया गया, दो हाथ दो पांव दो दो कान वगैरह वगैरह, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो भगवान विस्तार करते हैं अपना, तो अपने तरह ही विस्तार करेंगे, कुछ अलग विस्तार क्यों करें, जैसे हम भी विस्तार करते हैं तो हमारा सा हमारी इच्छा जो होती है उससे विस्तार, ऐसा विस्तार करते हैं, तो तो भगवान को इच्छा हुई एको हम बहुश्याम। तो कृष्ण भगवान का सबसे पहला विस्तार वाम अंग में से राधा और बाद में साइमल्टेनियसली बलराम राधा रानी। कृष्ण भगवान का विस्तार है शक्ति के रूप में राधा रानी और बलराम बल के रूप में बलराम। और बलराम विस्तार से चार क्वाड्रुपल विस्तार हुए वासुदेव संकर्षण प्रद्युमन अनिरुद्ध। ये चार चतुर्व्यूह बोलते हैं। सो भगवान का धाम है गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन और गोलोक वृंदावन ये माधुर्य धाम है जहां माधुर्य मधुरता माधुर्य लीला होती रहती है। और माधुर्य धाम की शक्ति है राधा रानी। उनको अंतरंगा शक्ति कहते हैं या तो आह्लादिनी शक्ति या तो योग माया पोटेंसी योग माया शक्ति कृष्ण भगवान की। राधा रानी राधा रानी का साम्राज्य है ये शक्ति। और राधा रानी भगवान की लीला अपने सखियों के साथ विस्तार करती है। सखी बिना भगवान की लीला का विस्तार नहीं हो सकता। राधा रानी और राधा रानियों की सखी और कितनी सखी 8 राधा रानी की मुख्य सखी है और मुख्य सखी की मंजरियां अनंत कोई गिनती नहीं। मंजरियां किंकरियां सहचारिणियां तो ये सब सखियां हैं। वो विस्तार करती रहे भगवान का भगवान की लीला का विस्तार। भगवान आत्मा एंजॉयिंग भगवान का नाम है कि आत्माराम एवर एंजॉयिंग। राम मतलब एवर एंजॉयिंग रमण करने वाले रमण भगवान हमेशा रमण करते हैं। यही इनका एक काम है और कोई काम नहीं रमण करना। तो रमण करने के लिए रमणीया उनने पैदा की। और बलराम से चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युमन अनिरुद्ध। और ये चतुर्व्यूह भगवान के धाम में गोलोक वृंदावन माधुर्य धाम में ये चतुर्व्यूह का आविर्भाव होता है। और वो संकर्षण में से अगेन जो भगवान के धाम में धाम से गोलोक वृंदावन से नीचे इधर गिधर बाजू में वैकुंठ लोग हैं। वैकुंठ सबके फोन बंद कर दो। तीसरी बार हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूं कि साइलेंट मोड पे रख लो आपका मैसेज आ जाएगा। सबके फोन यहाँ एवरीबडी हैज ए फोन। एवरी फीमेल हैज ए ईमेल एंड एवरी मेल है ना। सो नो मोर फोन। सबके फोन ऑफ हर रोज। कल मैं नहीं कहूंगा प्लीज। मुझको डिस्टर्ब नहीं होगा लेकिन सबको डिस्टर्ब जरूर होता है। तो सब साइलेंस मोड पे। तो भगवान के धाम के नीचे है वैकुंठ धाम। वैकुंठ और वैकुंठ धाम ये ऐश्वर्य धाम है। ऐश्वर्य धाम ये फोन भी ऐश्वर्य है। वैकुंठ धाम ये ऐश्वर्य धाम है। और वहां भी ये जो संकर्षण है उनमें से दूसरा सेट्स ऑफ चतुर्व्यूह सेट चतुर्व्यूह का वासुदेव संकर्षण प्रद्युमन अनिरुद्ध ये वैकुंठ धाम में दूसरा चतुर्व्यूह। और वहां लक्ष्मी जी प्राधान्य है। राधा रानी गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ धाम में ऐश्वर्य, लक्ष्मी जी ऐश्वर्य है, और ऐश्वर्य धाम में क्या होता है कि विष्णु भगवान राजा जैसे होते हैं, बड़े राजा, और सब उनके सेवक हैं ओन रेवरेंस में, जैसे राजा और उनका छोटे से छोटा नौकर हो तो राजा से घबराता है और राजा से प्रेम करता है, लेकिन नौकर की तरह, मालिक की तरह, लेकिन वो जो प्रेम का जो तादात्म्य होना चाहिए, गाढ़ तीव्रता, वो नहीं होती, वो माधुर्य धाम में होती है। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को भूल जाते हैं, मैं भगवान हूं। गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण ऐसा नहीं समझते कि मैं भगवान हूं, मैं आपकी तरह ही हूं, फ्रेंड, मित्र या पुत्र, यशोदा और नंद महाराज के पुत्र। वहां ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का कोई भी स्थान नहीं है। भगवान अपना ऐश्वर्य वहां ढांक के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, ऐश्वर्य छुपा लेते हैं। और जो वैकुंठ धाम है वहां ऐश्वर्य का प्राधान्य है, और भक्त वहां भगवान से ऑन रेवरेंस में रहते हैं, जैसे राजा और सेवक, और वहां इंटीमेसी नहीं आ सकती। जो संबंध, गाढ़ संबंध भगवान से होना चाहिए, वो नहीं आ सकता। भगवान बहुत दूर रहते हैं और हम उनकी सेवा में दूर से सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कृष्ण भगवान के कंधे पर चढ़ गए और दाव दो हमारा, ऐसा नहीं। ग्वाल बाल बोलते हैं, द्वाल हमारे, हमारा दाव दो। भगवान इंटीमसी, राधा रानी मान में बैठ जाती है भगवान से रूठ के, भगवान मनाते हैं उनको, उनको मनाते, इतना मनाते, इतना ऑलमोस्ट लाइक क्राइंग। राधा रानी मानती नहीं तो भगवान इतना प्रयास करते हैं मनाने को। ऐसा नहीं कि राधा रानी, सब भक्तों को, भगवान वहां भगवान नहीं रहते, माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, ये माधुर्य धाम जहां बहुत इंटीमेसी, भक्त भक्त ही भगवान बैठ सक, भक्त भगवान नहीं होता लेकिन उनका स्थान भगवान से ऊपर हो जाता है। अर्जुन, ये देखो अर्जुन और कृष्ण, यहां कृष्ण का स्थान एक सारथी के रूप में, ये माधुर्य धाम है, इंटीमेसी। वैकुंठ में वो नहीं आ सकता, इसलिए ऐश्वर्य, ऐश्वर्य धाम है। वैकुंठ में भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं, गोलोक वृंदावन में अपना ऐश्वर्य वो कवर रखते हैं, प्रकाशित नहीं करते अपना ऐश्वर्य। भगवान भूल जाते मैं भगवान हूं, तभी भगवान को मौज आएगी, आनंद आएगा भक्तों के साथ, आनंद लीला करने में। और उसके नीचे ये वैकुंठ धाम, ये अनंत कोटि वैकुंठ धाम है, ये लोटस जैसे कि एक कमल का फूल बड़ा हो, और बीच वाला भाग जो है उनको गोलोक वृंदावन कहते हैं, येलो भाग, ये जो पीला भाग होता है, वर्ल्ड जिसको इंग्लिश में कहेंगे, तो वो बीच वाला भाग जो है गोलोक वृंदावन, और उनकी पंखुड़ियां हैं, अनंत कोटि पंखुड़ियां, वो है वैकुंठ धाम। अलग अलग वैकुंठ लोक, वैकुंठ लोग हैं अलग अलग, और हर वैकुंठ लोक में पंखुड़ियों में विष्णु मूर्ति है, 24 मूर्ति विष्णु मूर्ति है, और अलग अलग पंखुड़ियों में अलग अलग अवतार हैं। सब अवतार वहां मौजूद हैं, नरसिंह, वामन, राम, बलराम, माधव, सब अवतार वहां मौजूद हैं वैकुंठ लोक में। भगवान जब चाहते हैं तो अवतरित होते हैं वहां से। ये वैकुंठ लोग हैं, वैकुंठ लोग। और वैकुंठ लोग के नीचे हैं कैलाश, जहां शंकर भगवान सदाशिव, या शंकर भगवान सदाशिव ये वैकुंठ में, लेकिन शंकर भगवान पार्वती, जहां शक्ति पार्वती है, राधा रानी वैकुंठ, आई मीन वैकुंठ में लक्ष्मी जी, और यहां पार्वती जी और शंकर भगवान कैलाश, और उसके नीचे है ब्रह्म ज्योति। ये आप ध्यान रखना कि ये सृष्टि क्या है और हम कहाँ हैं, हमको कहाँ जाना है, हमको जाने की कहाँ जाने की कोशिश करना चाहिए, हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए, हम ऐसे कैसे जाएंगे कहाँ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके नीचे है ब्रह्म ज्योति, जो हमने बात की, ब्रह्म ज्योति में जो ज्ञानी लोग लटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ब्रह्म ज्योति, भगवान श्री कृष्ण की शरीर की आभा प्रभा ज्योति। और ये ब्रह्म ज्योति के नीचे विरजा नदी है, जिसको कहते हैं कारणोदक समुद्र। समुद्र है, बहुत बड़ा वास्ट ओशन, कर्णोदक समुद्र। और ये कर्णोदक समुद्र ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को अलग करता है। जैसे जमुना पूर्वी दिल्ली और पश्चिम दिल्ली, दिल्ली को और पूर्वी दिल्ली को अलग करती है जमुना, उसी तरह कर्णोदक समुद्र आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को अलग करता है। और एक कर्णोदक समुद्र में कर्णोदक से विष्णु शयन करते हैं। तो बलराम संकर्षण, दूसरा संकर्षण, और वो संकर्षण में से ये तीन विष्णु पुरुष अवतार, पुरुष अवतार, तीन पुरुष अवतार हैं, कर्णोदक से विष्णु, गर्भोदक से विष्णु और क्षीरोदक से विष्णु। ये तीन पुरुष अवतार है, कल थोड़ी सी बात हुई थी। तो ये कर्णोदक समुद्र में कर्णोदकशायी विष्णु शयन करते हैं, और उनके शरीर में से जो छिद्र होते हैं, शरीर के छिद्र चमड़ी में, वो छिद्रों से अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। उनके उच्छ्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, और वो ब्रह्मांड भौतिक ब्रह्मांड है। विरजा नदी की इस ओर आते हैं, विरजा मतलब कर्णोदक समुद्र, ये भौतिक ब्रह्मांड बाहर आते हैं। तो ये जो कर्णोदक से विष्णु है, ये कर्णोदक से विष्णु दुर्गा देवी के ऊपर दृष्टिपात करते, हमने बात कही थी, कर्णोदक से विष्णु दुर्गा देवी पर दृष्टिपात करते हैं और उसमें इम्प्रेग्नेशन होता है दृष्टिपात से, जो 24 महत्तत्व है, महत्तत्व से ये उत्पन्न होते हैं। और हर ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में फिर से कर्णोदक से विष्णु का विस्तार गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में होता है। और ये गर्भोदक्षय विष्णु ये ब्रह्मांड को अपने पसीने से आधे तक भर देते हैं। अपने जैसा पसीना उनका दुर्गंध वाला नहीं है, दिव्य। तो ब्रह्मांड आधे तक भर जाता है, और उसमें गर्भोदक समुद्र में गर्भोदक्षय विष्णु शयन करते हैं, और उनकी उनकी पग पग उनके चरणों की चर्चा, सेवा, पूजा लक्ष्मी जी करते हैं। जो फेमस पिक्चर, आप लक्ष्मी जी उनके पांवों की सेवा करती है, वो गर्भोदक्षय विष्णु है। जो शेष सैया में, शेष नाग की सैया में शयन करते हैं गर्भोदक समुद्र में, ये ब्रह्मांड के गर्भोदक समुद्र में। और ये गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कमल में से कमल फूटता है, कमल जाइजेंटिक कमल, कोई छोटा मोटा कमल नहीं, बहुत बड़ा विस्तार कमल का। जस कल्पना करो, जो कमल के डीरे में, स्टेम ऑफ दिस लोटस फ्लावर, कमल के डीरे में बीच में पृथ्वी है, ऊपर तो कितना बड़ा गर्भोदक समुद्र होगा, कितना बड़े भगवान होंगे गर्भोदक्षाई विष्णु, और उनकी नाभि कमल से जो कमल है उसमें ये 14 भुवन, पृथ्वी, स्वर्गलोक और पाताल लोक, 14 भुवन। पृथ्वी के नीचे तल, तलातल, रसातल, पाताल, और पाताल के बिल्कुल बाजू में सूर्य ऊपर है, और नीचे नहीं है, नीचे अंधकार, पाताल में अंधकार ही अंधकार है, नाग लोग रहते हैं। तो ये पाताल जो है उसके बाजू में क्या है, नरक, और नरकों का थोड़ी सी झलक मैंने पहले आपको बताई थी, कुंभी पाक नरक और सुकरमुख नरक वगैरह वगैरह, कई नरक, 24 नरक है। पापी लोगों का ये डेस्टिनेशन है, जो पाप करते हैं ये लोग ये नरक वासी बनते हैं, पापी ये नरक में जाते हैं, और जो पुण्य करते हैं ऊपर स्वर्ग लोक में, स्वर्ग लोक, भूर लोक, भूवर लोक, महर लोक, तप लोक, जन लोक, तप लोक सबसे ऊंचा लोक है, जो लोटस है, फूल, कमल का फूल, इस कमल के फूल जैसा जो ऊंचा स्वर्ग है, जो ब्रह्मा का लोक है, ब्रह्म लोक बोलते हैं, तो ये ब्रह्म लोक ये सबसे ऊंचा स्वर्ग लोक है। तो ये पृथ्वी से ऊपर पहले जो लोक है उसमें राक्षस लोग रहते हैं, भूवर लोक, राक्षस लोगों का लोक है, उससे ऊपर स्वर्ग लोक है, इंद्र का लोक, उसके ऊपर महर्षि, सब सप्तर्षि महर्षि सब रहते हैं, जनलोक, तपलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सत्यलोक सबसे ऊंचा लोक, सत्यलोक में ब्रह्मा रहते हैं, ब्रह्मा। तो स्वर्ग में सुख है, तो सुख के लिए कई कई लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं पुण्य करके। जब आप पुण्य करोगे भूखों को, खान पान और कंबल और नीडी को, आप सब कुछ पुण्य करोगे, हॉस्पिटल खोलना, स्कूलें खोलना, कुआ वाव तो वगैरह करना, उससे पुण्य होता है, और पुण्य से हमको क्या मिलता है, स्वर्ग लोग मिलता है। और पाप करते हैं, गाय का मांस या अवैध संबंध या जुआ खेलना या शराब चाय पीना, ये पाप है, तो पाप करने से हमको नरक मिलता है, चाय भी, यस यस यस। देखो जी, आपकी मम्मी ने आपको, सुनो, डोंट चैलेंज मी, व्यास गादी से बोल रहा हूँ, व्यास भगवान बोल रहे हैं, आप इसको रिस्पेक्ट करो, ये शास्त्रों का कथन है। आपकी ग्रैंड माँ ने कहा था कि चाय पीना मत बेटा, ये बहुत खराब चीज है, कहा था नहीं कहा था, तो मैं कहता हूं तो क्यों नहीं मान सकते। अगर चाय छोड़ दोगे तो आपको सर दर्द होगा कि नहीं होगा, हाँ, चाय नहीं पियो। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई छोटा सा विषय है, आप समझ लो शान में, कि ये इंटॉक्सिकेशन ये पाप है, कोई भी इंटॉक्सिकेशन। मुझको, मैं चाय पीता था पहले, लेकिन मुझसे उनको, मुझको रोग हुआ, मैंने चाय बस भक्त बन गया, मैंने डॉक्टर ने नहीं बताया, डॉक्टर ने तो इलाज किया, सब कुछ इलाज किया, लेकिन प्रभुपाद जी को मिला, चाय छोड़ दी, मेरा रोग तुरंत चला गया। ये मेरा खुद का अनुभव है, झूठ नहीं बोलता यहां बैठ के, तुरंत तुरंत चला गया रोग। तो ये पाप जो करते हैं, ये पाप को यहां ही नरक मिलता है, हैंगओवर, सर दर्द नहीं होता। तो सर दर्द होता है, ये चीज अच्छी है, हमारा हेल्थ, चाय से हमारी, आपका लीवर खत्म, आहिस्ते 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 आपका, जो जिसका लीवर कमजोर हो तो डॉक्टर कहते हैं चाय छोड़ो कि चाय बढ़ाओ, क्या बोलते हैं कि बढ़ाओ छोड़ो, बिल्कुल खराब हो जाता है। अरे हमारा विषय ये नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूं न मैं आपको, लेकिन पाप की बात कर रहा हूं कि पाप है, सब चार प्रकार के बड़े पाप हैं कलयुग में, सबसे महान पाप है इंटॉक्सिकेशन, चाहे छोटा हो या मोटा, और मीट चाहे छोटा हो या अंडा हो, मीट फिशिक्स, या तो अवैध संबंध, जो अवैध संबंध करते हैं वो बोलते हैं ये पाप नहीं है, तो बहुत आनंद की बात है, कैसे पाप हो सकता है, वो ऐसा बोल। चोर कभी नहीं कहता मैं चोर हूं, कभी नहीं कहता, कभी नहीं कहेगा, सब मेंटल एडजस्टमेंट करेंगे, ये पाप नहीं है, अवैध संबंध पाप नहीं है, लेकिन है। तो जो पापी है वो कहा जाता है नरक में जाता है। मैं आपको कह रहा हूं कि हमारा डेस्टिनेशन, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मैं आपको इस सृष्टि की रचना बता रहा हूं कि सृष्टि क्या है, चाहे आप चाय पियो उनसे मुझको मतलब नहीं, चाहे आप जो भी करना है करो, जैसा करोगे वैसी आपकी गति, सीधी सी बात है, ये आप आपकी गति को रोक नहीं पाओगे, जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। तो मैं आपको डेस्टिनेशन, अलग अलग डेस्टिनेशन, अलग अलग लक्ष्य, अलग अलग आपकी गति बता रहा हूं कि गति क्या होगी। जो पापी है उनकी गति नरक है, जो पुण्य कर्म करते हैं उनकी गति है स्वर्ग, और जो भक्ति करते हैं उनकी गति है गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन की, गोलोक वृंदावन जहां माधुर्य लीला, जहां भगवान के साथ नाचना गाना खाना, तीन चीजें, नाचना गाना और खाना, ये दिव्य चीजें हैं। खाना भगवान का प्रसाद, मीट फिश एग्स नहीं, सो नाचना गाना और खाना भगवान के साथ, तो ये डेस्टिनी। नरक लोग हैं जो पाताल में, और स्वर्ग लोग हैं जो ऊपर, और ये है भगवान की नाभि में से जो कमल, वो कमल के डीरे में, स्टैम में, डीरा समझते हो ना, डीरे में, और ये डीरे के बाहर सूर्य, तापमान, सूर्य और चंद्र, ये सारे प्लैनेटरी सिस्टम जो हैं उनको तापमान प्रकाशमान कर रहा है, लेकिन सूर्य चंद्र का प्रकाश पाताल तक नहीं पहुंचता क्योंकि वो ऊपर है, स्वर्ग, और गंगा भी वैसे ही आती है ऊपर से, गंगा स्वर्ग से होते हुए। तो ये है गर्भोदक्षय विष्णु, और गर्भोदक्षय विष्णु का आगे आविर्भाव है क्षीरोदक्षय विष्णु, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, श्वेत दीप में, श्वेत दीप, एक एक ये भौतिक जगत में श्वेत दीप, जो आध्यात्मिक जगत है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, श्वेत दीप, वो श्वेत क्षीर सागर में क्षीरोदक्षय विष्णु शयन करते हैं, और वो क्षीरोदक्षय विष्णु जो है उनके द्वारा सब भगवान के अवतार आते हैं, भगवान श्री कृष्ण या उनके जो अवतार हैं वो वहां होके होते हुए आते हैं, क्षीर सागर से होते हुए आते हैं, इसलिए हम लोग ये समझते हैं कि विष्णु के ही सब अवतार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैं यहाँ दिल्ली में एयर इंडिया का प्लेन लेके मैं न्यूयॉर्क उतरूं, तो न्यूयॉर्क वाले उतरता हूँ तो न्यूयॉर्क वाले बोलेंगे कि ये प्लेन में से आए, लेकिन मैं हवाई जहाज में से मैं नहीं आया हूँ, मैं तो था यहाँ हवाई जहाज में बैठ के वहाँ आया, हवाई जहाज से वहाँ आया, उसका मतलब ये नहीं कि मैं हवाई जहाज मेरा उद्गम स्थान है। उसी तरह भगवान के अवतार वहां से होते हुए आते हैं, वैकुंठ लोक में अवतार है ही मौजूद है और वहां होते हुए आते हैं, विष्णु क्षीरोदक्ष विष्णु से होते हुए, इसलिए हम समझते हैं कि ये विष्णु भगवान का अवतार है। जब सब देवी देवताओं को दुख होता है तो वो क्षीर सागर के किनारे जाते हैं और क्षीरोदक्षय विष्णु भगवान को प्रार्थना करते हैं पुरुष सूक्त से, सहस्त्र शिरसः पुरुषः सहस्त्रपाद वगैरह वगैरह। पुरुष सूक्त से देवी देवताएं भगवान क्षीरोदक्षय विष्णु को प्रार्थना करते हैं हमारी सहायता करो। तो भगवान सुनते हैं और आते हैं उनके उनके रक्षण के लिए। तो यह सृष्टि की रचना मायपुर धाम, पांच हिस्से हैं भगवान के धाम का, उसके नीचे वैकुंठ धाम, वास्ट चार गुना है और ये भौतिक जगत 1/4। ये भौतिक जगत भगवान ने जेल के लिए बनाया, जेल है भगवान, जैसे राजा अपने राज्य में एक जेल बनाता है, जरूरत नहीं है लेकिन चोर लुटारू होंगे इसलिए राजा क्या करे, राजा नहीं चाहते चोर लुटारू हो लेकिन होते हैं तो जेल बनानी पड़ती है। तो ये भगवान ने भौतिक जगत जेल सा बनाया जहां आत्मा आके करेक्ट होता है, करेक्शन सेंटर। भगवान के धाम में जो आत्माएं हैं उनके इच्छा द्वेष समुस्थेन द्वंद्व मोहेन, उनने इच्छा की भगवान तरह बनना, भगवान बनना, एंजॉय, मैं भी एंजॉयर हूं, मैं भी पुरुष हूं, इसलिए भौतिक जगत में आत्माओं को भगवान भेजते हैं, गिरता है आत्मा वहां से, पतन होता है आत्मा का, और पतन होता है तो आत्मा समझ, इसलिए ये करेक्शन सेंटर समझ, आत्मा को करेक्ट करने के लिए ये भौतिक जगत है जहां दुख जहां सुख का समन्वय, ये पृथ्वी पर समन्वय है, नहीं तो नरक में जाओ दुख ही दुख है, दुख ही दुख, पृथ्वी पर सुख दुख का समन्वय है, समानता है, यहां भक्ति हो सकती है इसीलिए कि समन्वय है, नरक में भक्ति नहीं हो सकती क्योंकि बहुत दुख है। भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे दुख हो तो भजन नहीं होगा, और स्वर्ग में सुख है, यहाँ ये सारा इलाका सुख का है, पौशी इलाका का है ना, रजौरी गार्डन और ये सब गार्डन से यहाँ, और गार्डन्स में लोग पौशी लोग, भजन नहीं हो सकता, ठीक है आप लोग तो भाग्यवान हो, तो स्वर्ग में भी भगवान की भक्ति नहीं हो सकती और नरक में भी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये सुधारक केंद्र है, तो हम पृथ्वी पर बैठे हैं, पृथ्वी में इतना सा दिल्ली और दिल्ली में भी इतना सा पामर जीव सोच रहा है मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। ये सुधारक केंद्र है, हमको सुधार, हमको करेक्शन सेंटर है, हमको करेक्ट होना पड़ेगा और वापिस भगवत धाम में वापस लौटना होगा। स्वर्ग नरक ब्रह्म ज्योति वैकुंठ या गोलोक वृंदावन, शास्त्रों में गोलोक वृंदावन का वर्णन है अति सुंदर। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि रवि पालयंतम, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का धाम चिंतामणि धाम है गोलोक वृंदावन। टच स्टोन चिंतामणि, चिंतामणि वो स्टोन है, वो पत्थर है जो आपकी चिंता हर लेता है। वो चिंतामणि जैम, इनसे भगवान का धाम बना है। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेशु, और वहां कल्प वृक्ष है। आप जो भी कल्पना करोगे आपको तुरंत आपकी कल्पना विचार पूर्ण हो जाएंगे। कल्प वृक्ष भौम वृंदावन में कई कल्प वृक्ष है, हमारे वृंदावन में यहां कल्प वृक्ष लक्षावृतेशु सुरभि रवि पालयंतम, और भगवान वहां सुरभि गाय का पालन करते हैं जो अखुट दूध देती है। सुरभि रवि पालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, और वो जो गोविंद श्री कृष्ण उनकी सेवा सहस्त्र संभ्रम कई 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 करोड़ों अरबजों खरबजों लक्ष्मिया गोपियां श्री कृष्ण भगवान की सेवा में रत है, हमेशा रत रहती है। और वो भगवान का धाम है वो अति सुंदर बाग बगीचा जैसा गार्डन स्टेट, सारा धाम गार्डन का बना है। वृंदावन गो लोक, वृंदावन गो गायों का लोक, सुरभि रवि पालयंतम गो लोक वृंदावन वन बाग, सारा सुंदर बाग बगीचे फूल, वहां वसंत हमेशा रहती है बहार, और सुंदर झूले सुंदर झरने मतलब कि सुंदर सुंदर तालाब नदियां सुंदर सेटिंग, और उसमें भी निकुंज कुंज निकुंज भगवान की लीलाओं की, जो भगवान की गूढ़ रहस्यमय लीला होती है वो कुंज निकुंजों में होती है। कुंज निकुंज ये पहले तो बहुत घना पेड़ों से बना हुआ होता है, जैसे कि तमाल वृक्ष कदम वृक्ष ये सब आध्यात्मिक वृक्ष है। ये वृक्षों से एक घना एक रूम जैसा वातावरण से छा जाता है, और उसके ऊपर क्रीपर वेलियां सुंदर फूल जिनके ऊपर फूल फल, एक कल्प वृक्ष में हर किस्म के हर प्रकार के फल आते हैं। एक ही वृक्ष पर आम का फल और नारद ये ऑरेंज या कोई भी फूल बनाना फल कोई भी फल ले लो, कल्प वृक्ष पे एक वृक्ष पर हर किस्म के फल। तो ऐसे जो वृक्ष है उनसे एक कुंज बनता है निकुंज बनता है घना प्राइवेट रूम जैसा, और ऐसे जहां प्रकाश भी नहीं जा सकता ऐसा घना बनता है। ऑफकोर्स भगवान जब अंदर जाते प्रकाशित होता है तो उनको बोलते हैं निकुंज कुंज। ते बाग में वृंदावन गोलोक वृंदावन में ऐसे निकुंज होते हैं जिनमें राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाएं गूढ़ लीलाएं चलती रहती है। ये गोलोक वृंदावन है। वृंदावन मैंने कहा कमल के फूल के अंदर का जो भाग होता है तो उनके परिघ पे, मतलब कि ऑन द सरकमफरेंस पर सुंदर मजा की बर्फीली पहाड़ियां होती है, सुंदर पहाड़ियां, और बीच में नदियां, क्रीपर्स और सुंदर गोलोक। वहां एंग्जाइटी है नहीं, कोई प्रकार की एंग्जाइटी नहीं। वही कुंठ, कुंठ मतलब एंग्जाइटी, दुख, वही जहां नहीं है, नहीं। वहां तापमान भी है तो बिल्कुल 70-80 degrees, बर्फ भी है तो 70-80 degrees, बर्फ भी ठंडा नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं वहां ड्राफ्ट भी नहीं है, मतलब कि लश्कर में जाना लड़ना, कोई रोता है, कोई ककड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। आनंद का साम्राज्य, आनंद ही आनंदाम बुद्धि वर्धनम, हर पल आनंद का वर्धन होता है, हर पल भगवान की भक्तों के साथ लीलाओं का भी वर्धन होता है, और हर भक्त के साथ भगवान का संबंध 1-to-1 बेसिस पर। सबसे भगवान इतना ही प्यार करेगा, करेंगे जितना हर से करते हैं, राधा रानी से करते हैं, हर गोपियों से, हर ग्वाल, हर से, हर जीवात्मा से भगवान 1-to-1 बेसिस पर प्यार करते हैं। और जीवात्मा भी यहाँ वहाँ, हर जीव एक दूसरों से भी प्यार करते हैं, क्यों? कि सब भगवान की सेवा में लगे हैं, पति हो, पत्नी हो, पुत्री हो, पिता हो, जो भी हो, सब भगवान की सेवा में लगे हैं। हारमनी, वहाँ हारमनी है जीवात्माओं में, और यहाँ डिसहारमनी, पाकिस्तान, भारत, डिसहारमनी, हिंदू मुस्लिम, कोई भी प्रकार की हारमनी नहीं है। भगवान का धाम आनंदमय, आनंदमय, ऐसे धाम में कौन जाना नहीं पसंद करेगा, किसको जाना है भगवत धाम? अरे वाह, सब हाथ ऊंचे, लेकिन जाने की रीत बताएंगे, किसी को नहीं करना है। अगर आपके घर में मुझको रहना हो तो आपसे हिल मिल जुल के रहना पड़ेगा, है ना? मुझको नियम कुछ लागू पड़ेंगे आपके, ये कर सकते ये नहीं कर सकते, वो कर सकते ये नहीं कर सकते। भगवान का धाम सत चित आनंद है, मय है, तो आपको भगवान के धाम में जाने के लिए सच्चिदानंद बनना होगा, आपकी चेतना सच्चिदानंद करनी होगी, कृष्ण भावना करनी होगी, आपकी चेतना आपको ऊपर उठा के दिव्य बनानी होगी, और उनके लिए कुछ तरीके अपनाने होंगे, लेकिन वो तरीके नहीं अपनाएंगे। जाना है जरूर, लेकिन करना है कुछ नहीं, मुफ्त में। इसलिए तो हम यहाँ गिरे, हम गिरे इसलिए कि हम गंदा काम करना, भगवान के द्वेषी, ये सबसे बड़ा गंदा काम है। मैं भोगता हूँ, भगवान भोगता हो ना हो कुछ, मैं भोगता हूँ। आपको भोग्य बनना पड़ेगा, भोगता नहीं, भोग्य बनना पड़ेगा। हम सब आत्मा है, और आत्मा ये भोग्य है, फीमेल, पुरुष एक है भगवान के धाम में, पुरुष एक, वो है कृष्ण। पुरुष मतलब भोक्ता। तो ये भगवान का सुंदर धाम जहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं, वैकुंठ, और सुंदर, और सब में हार्मनी, और सब भगवान की सेवा में लगे हैं, और भगवान भक्तों की सेवा में लगे हैं। भगवान भी भक्तों को आनंद देने में ही प्रवृत्त है, और भगवान भूल गए हैं कि मैं भगवान हूं, मैं आपकी तरह, भगवान भूल गए। भगवान को कोई गोपियां नचा भी लेती है, कोई गोपियां खरीद भी लेती है, वहां प्रेम का साम्राज्य और कुछ नहीं। प्रेम के बिना आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, माधुर्य धाम, माधुर्य रस, माधुर्य प्रेम, रागानुग भक्ति, स्पॉन्टेनियस। आपको कोई सिखाना नहीं होगा कि भगवान से प्रेम करो, भगवान से सहज तौर से आप प्रेम करोगे। व्रज की रागानुग भक्ति, रागानुग का मतलब है इष्ट के लिए बहुत तीव्र इच्छा, तीव्र अभिलाषा इष्ट के लिए, कृष्ण के लिए कैसे पाऊं, कहां पाऊं, ऐसी तीव्र भागते दौड़ते रहते हैं हमारे सठ गोस्वामी रूप सनातन गोस्वामी। व्रज में भागते रहते, मैं कहां, हे कृष्ण कहां मिलूं, हे राधारानी व्रज देवी आप कहां कहां मिलोगे। राधा कुंड तटे कालिंदी तनया तीरे च वंशी वटे, कहां हो, वंशी वट में हो, कहां, कालिंदी नदी के किनारे, जमुना के किनारे हो, गोवर्धन में राधा कुंड पे हो, कहां हो। दौड़ भागते थे, ऐसा नहीं चलते थे, भागते, कहां हो, कहां पाऊं मैं आपको। ये रागानुग तीव्रता, इतनी तीव्रता, बेचैनी, हमेशा बेचैनी। तो ये प्रेम का साम्राज्य है गोलोक वृंदावन, जहां सब जीवात्माएं भगवान के साथ प्रेम और भगवान जीवात्माओं के साथ प्रेम। और तीन गुना है आध्यात्मिक जगत, तो ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, ब्रह्म ज्योति नहीं, ये सब लक्ष्य कच्चे लक्ष्य, कच्चे लक्ष्य हैं। हमको ये सब नहीं चाहिए। गोलोक में श्रीया कांता कांता परम पुरुष कल्प तरवो, श्रीया कांता, श्रीया लक्ष्मिया भगवान की कांता है, कांत भगवान कांत है और लक्ष्मिया भगवान की कांता है। श्रीया कांता कांत परम पुरुष, परम पुरुष की कांता है। कल्प तरवो, कल्प तरु है, द्रुमा भूमि चिंतामणि, और भूमि चिंतामणि जैम की बनी है, भूमि चिंतामणि, तोयम अमृतम, और वहां पानी, पानी नहीं है, अमृत, तोयम अमृतम, कथा गानम, वहां लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे जैसी बात नहीं करते, गान सुंदर मीटर में, सुंदर छंद में, सुंदर सुंदर गाना गाते हुए बात करते हैं, सुंदर मीटर, आपको पता है छंद, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतये स्तुणवन्ति दिव्येस्तवये वेदये सांग पदक्रमोपनिषदये गायन्ति यम सामगा ध्यानां वस्तु तदगतेन मत मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुसुरासुरगणा देवै तस्मै नमः। कृष्ण भगवान को ऐसे गा के बात करते हैं, ऐसे मीटर में गाते हुए, कथा गानम नाट्यम, गमन अपि, गमन जब जाते हैं चलते हैं तो गमन, गमन नाट्यम अपि, नाचते हुए, नाचते हुए, अभी हमने सुंदर नाच किया, तो नाचता कौन है, जो आनंद में रहता है, आनंद विभोर में, भाव विभोर में रहता है वो नाचता है। तो वहां सब आनंद खोए खोए रहते हैं, उनको कोई ख्याल नहीं रहता क्या है, एक ही ख्याल कृष्ण, कृष्ण प्रेम। तो नाचते हुए चलते हैं, कथा ज्ञान, कथा गानम नाट्यम गमन अपि, गमन जाना नाट्य करते हुए, नाटक या तो नाचते हुए, गानम कथा गानम नाट्यम गमन अपि, बंसी प्रिय सखी, और सबके पास बंसी, बंसी प्रिय सखी, चिदानंदम ज्योति, भगवान के प्रकाश से ये धाम प्रकाशित है। तो ये धाम में कौन नहीं जाना चाहेगा जहां प्रेम ही प्रेम, हर पल प्रेम बढ़ता है, सब प्रेम के भूखे हैं, सब प्रेम के भूखे हैं। और प्रेम परमात्मा से ही कर सकते हैं, प्रेम परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से ही कर सकते हैं। और जहां भी प्रेम करोगे फिजूल का होगा, वापस आएगा, आपका प्रेम लौट के वापस आएगा। परणु तो प्रीतम प्यारो, अखंड सौभाग्य मारो, रंडावानो भय टड़ो रे। मीरा कहती है कि अगर प्रेम एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, दर्द तब मिटे जब वैद्य सावरिया होए। मेरे प्रेम के प्रतीक पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बने तो ये दर्द मिट जाएगा। एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, ये प्रेम का साम्राज्य है, सब प्रेम के भूखे हैं। प्रेम के बिना अगर आपके घर में एक आपको प्रेम नहीं करता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक ही, आप पांच छह हो उसमें से एक प्रेम सबसे नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। एक, सबको सबका प्रेम मिलना चाहिए। तो ये प्रेम का साम्राज्य एक ही जगह, वो गोलोक वृंदावन, तो वहां हमको जाना है। तो ये डेस्टिनेशन है नर्क। पाप करोगे आपका जाना कहाँ होगा? नर्क में। आपका बस नहीं चलेगा, जमदूत आपको पकड़ेंगे, खींच के ले जाएंगे और भूनेंगे, फ्राई करेंगे आपको। और पुण्य किया स्वर्ग में जाना पड़ेगा, लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, अयि त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। जाना आना, स्वर्ग में जाना वापस आना, गता गतम काम कामा लभन्ते। तो स्वर्ग भी अच्छी चीज नहीं है, स्वर्ग में भगवान को भूल जाओगे। और ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मलीन, ब्रह्म की उपासना, निराकार की उपासना, निराकार की उपासना दुखदायी होगी। भगवान कहते 12th चैप्टर भागवत गीता पहले 3 श्लोक, क्लेशो अधिक तरसते शाम अव्यक्ता सक्त चेत शाम अव्यक्ता ही गतिर दुखाम देहवद भीरवाप्यते। ये गति दुखदायी है ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म। ज्ञानी लोग वहां पहुंचते हैं और भक्त लोग गोलोक वृंदावन सीधे, जहां प्रेम ही प्रेम और कुछ नहीं, सुंदर लोक। तो गोलोक जाने की प्राइस चुकानी होगी, ऐसा नहीं कि आपको टिकट मुफ्त में मिल जाएगी। तो उसको बोलते हैं अभिधेय, योग की पद्धति अभिधेय। तो अभिधेय प्रेम प्रयोजन, भगवान का धाम ये प्रयोजन है प्रेम, और अभिधेय चाहिए। और संबंध, जीव का संबंध, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये संबंध है। और अभिधेय है ये योग पद्धति। तो अलग अलग लोग अलग अलग योग भक्त योगी योग पद्धति अपनाते हैं, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, अष्टांग योग, सहज योग, कई कई योग। तो कर्मी कर्म योग, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। सकाम कर्म करोगे तो क्या मेरी इंद्रिय तृप्ति हो, सकाम कर्म कामनाएं के साथ कुछ काम करना इंद्रिय तृप्ति के लिए, राक्षस लोग करते हैं। ईश्वरोहम अहम भोगी, सिद्धोहम बलवान सुखी, राक्षस लोग ऐसा समझते हैं इंद्रिय तृप्ति मैंने जो कमाई करी वो कमाई मेरी इंद्रियों की तृप्ति के लिए है, उसको बोलते हैं कर्मी, सकाम कर्मी। कर्मी से अच्छा है निष्काम कर्मी। लेकिन कर्म किया इसलिए आपको फल भोगना ही पड़ेगा, अच्छा या बुरा, सकाम हो या निष्काम हो। भगवान के लिए निष्काम कर्म करना भक्ति है, वो अलग बात है। और ज्ञान योगी नेति नेति और निराकार ब्रह्म की उपासना, ज्ञानी और ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। वो समय नहीं है इसलिए सब योग में जल्दी जल्दी निपटाता हूं। मुझको आपको कहना कि गोलोक वृंदावन अगर जाना है, भगवान के धाम जाना है, तो भक्ति योग अपनाना होगा। ये ज्ञान योग नहीं चलेगा। ज्ञान अगर भक्ति के बिना है तो बेकार, शुष्क हो जाएगा। कर्म भी भक्ति के बिना है तो बेकार का है। भक्ति अपने आप में सक्षम है। भक्ति मतलब प्रेम। तो भक्ति योग से ही हमको गोलोक वृंदावन जाना है तो हमको लायक बनना होगा। नरक में जाना होगा तो नरक का शरीर पैदा करना पड़ेगा। स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग का शरीर पैदा करना पड़ेगा। हवा में उड़ना है तो हवाई शरीर हो चाहिए, हल्का सा। अग्नि में तो अग्नि शरीर, सूर्य ग्रह पर कई जीवात्मा है अग्नि शरीर के साथ। तो अगर गोलोक वृंदावन जाना है तो हमारी चेतना, हमारा शरीर, हमारा माहौल, सब कुछ गोलोक वृंदावन सा यहां से करेंगे तो प्रवेश मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। आप गंदे हो और गोलोक वृंदावन में जाना चाहते हो, कैसे बनेगा। गोलोक वृंदावन में गंदगी है ही नहीं, नरक में गंदगी है। तो यहां से हमको तैयारी करनी होगी। तो भगवान हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार करेंगे। अगर हम प्रयत्न ही नहीं, अगर कुछ लैकिंग थोड़ा सा रह गया इधर उधर तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयत्न तो जरूर करना पड़े। गंदे होंगे भगवान को कि मुझको ले लो आपके धाम में, भगवान सॉरी आपको भेजा है करेक्शन सेंटर में, करेक्ट हो, ये करेक्शन सेंटर है। तो ये भक्ति योग हमको अपनाना होगा। भक्ति की परिभाषा सिंपल परिभाषा ये है कि भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना। नारद मुनि पंचरात्र में भक्ति की परिभाषा करते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सब उपाधियों से मुक्त होकर, मैं काला हूं, गोला हूं, स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं धनवान हूं, ये उपाधियां हैं। MBA PhD हूं, अमेरिकन इंडियन, ये उपाधियां शरीर की हैं। ये उपाधियों से मुक्त होकर, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मल होके ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, अपनी इंद्रियों से ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों की सेवा करना, सेवनम भक्ति रुच्यते, भक्ति कहलाती है। सरल परिभाषा है भक्ति की। उपाधियों से मुक्त होके भगवान की इंद्रियों की, हमारी इंद्रियों से सेवा करना, उसको बोलते हैं भक्ति। तो हमारी इंद्रिय जीभ और हाथ, हाथ में माला, और जीभ और मुंह से बोलना है हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राम राम हरे हरे, ये भक्ति योग है। 16 माला कितनी कौन करेंगे, हाथ खड़ा कीजिए। गोलोक वृंदावन वाले देखो, अभी तक किसी का हाथ, गोलोक वृंदावन मुफ्त में जाना है सबको, मुफ्त में जाना है। भगवान कहते हैं कि नमाम साधयते योगो, मुझको योग से आप साध्य नहीं कर सकते हो। न मम साधयते योगो न सांख्य धर्म उद्धव। सांख्य और धर्म मुझको, सांख्य योग भी मुझको प्रसन्न नहीं कर सकता, धर्म भी मुझको प्रसन्न नहीं कर सकता। न स्वाध्याय तप त्यागो, न स्वाध्याय, स्वाध्याय भी मुझको प्रसन्न नहीं कर सकता, तप भी प्रसन्न नहीं कर सकता, और त्यागो त्यागी संन्यास भी मुझको प्रसन्न नहीं करता। यथा भक्ति मम ऊर्जिता, भक्ति ही मुझको प्रसन्न कर सकते हो भक्ति से। तो भक्ति योग सबसे शुरुआत पे, भक्ति की सबसे पहली शुरुआत मुंह से और जिह्वा से होती है। सेवन मुखे है जिह्वा दो स्वयं एव स्फुरत्यदा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राहमेन्द्रिय। जिह्वा से, मुंह से क्या बोलना है? हरे कृष्णा, सरल है ना? कोई दुख, कोई तकलीफ, काम में कोई रुकावट कर सकते हैं, खाना पकाते हुए, काम करते हुए, गाड़ी में जाते हुए, मेट्रो में जाते हुए कर सकते हैं। समय है, टीवी काला डिब्बा का सेवन बंद करो। 3 घंटा ये सो वो सो, सारा दिन टीवी चलता रहता है, बंद करो, बंद। इससे आपका जो कॉन्शियसनेस, चेतना है, वो पोल्यूटेड हो जाएगी, डिग्रेडेड। आपकी चेतना बहुत निम्न कक्षा की हो जाएगी। ये काले डिब्बे इसलिए बोल रहा हूं कि बंद करके 3 घंटा आप माला करो, माला करो। समय है, अगर समय का सदुपयोग नहीं करोगे तो समय आपको खा जाएगा। और यहां तो दो दो नौकर घर में लगे हैं, 5-5, 10-10 नौकर लगे हैं ये विस्तार में, कीर्ति नगर, रजौरी नगर, राजा नगर, सब नगर, गार्डन, कितना गर्व है, गार्डन, मेरा गार्डन। छोड़ो ये गार्डन और जोड़ो कृष्ण से। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे। गोलोक वृंदावन गार्डन है ना, ये राजा गार्डन का नाम गोलोक वृंदावन गार्डन होना चाहिए। तो ये है भक्ति। भगवान कहते हैं मुझको, न माम साधयति योगो स्वाध्याय तप धर्म त्याग। मम भक्ति ऊर्जिता, मेरी भक्ति से ही मैं पसंद हो सकता हूं। भक्ति योग, भक्ति योग की शुरुआत होती है मुंह से। ये भगवान के पास जाने की टिकट है 16 माला, और इनके बिना नहीं जा सकते। अब हम आखिरी दिन में बात करेंगे इनकी, लेकिन 16 माला करनी ही पड़ेगी आपको। अगर ये लेक्चर आप सुने हैं 7, और अंत में अगर आप घर गए हो कुछ लेके, तो 16 माला, नहीं लेके जा रहे हो आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि ये समय कलयुग है, और कलयुग में एक ही मात्र उपाय भगवान के नाम का, कलयुग केवल नाम, कोई उपाय नहीं है। नास्ते व गतिर अन्यथा, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। मैं क्या उपाय बताऊं आपको, और क्या उपाय बताऊं? सस्ते उपाय बहुत से हैं, लेकिन वो काम नहीं आएंगे। सब लोग सस्ते उपाय दे देते हैं आपको। ये सस्ता ही है, भगवान का नाम करना ये सस्ता ही उपाय है, कर सकते हो, आसानी है, सिंपल एंड सबलाइन। भगवान का नाम, तो ये भक्ति की परिभाषा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। और भक्ति के प्रकार नौ हैं, नौडा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये नौडा भक्ति है। श्रवणम से शुरू होती है, कीर्तन से शुरू होती है, विष्णु स्मरणम, श्रवण करना, कीर्तन, कीर्तन क्या करना है, हरे कृष्णा श्रवणम, कीर्तनम, कीर्तन करो, उनका श्रवण करो, और वही नामों पर ध्यान, विष्णु स्मरणम, वही नामों पर ध्यान करना है। ये तीन प्रकार की भक्ति एक साथ हो जाती है। सोलह माला, और सास जहां आई घर, बहू आई तो सास ससुर, चौसठ, याद रहा, चौसठ मालाएं करनी, क्योंकि रिटायरमेंट है, समय का सदुपयोग करो, 64 माला। और आखिरी जीवन में जब आखिरी साल दो साल रह जाए तो निरंतर माला, कीर्तनीय सदाहरी, माला छूटनी चाहिए हाथ से, हाथ से माला छूटनी नहीं चाहिए। सीधा गोलोक वृंदावन, टिकट आपकी हो गई, लेकिन तीव्रता बढ़ानी होगी। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, भगवान के चरणों की उपासना, पाद सेवनम, लक्ष्मी करती है भगवान की चरणों की सेवा, पाद सेवनम, अर्चनम, पूजा, वंदनम, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कई लोग यहाँ प्रणाम करते हैं व्यास गादी को, लेकिन भगवान को भी करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, वंदन, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्म कृताम विपाकम यत वाक मनोभीर विदतु नमस्ते समुक्ति पदे दया भाक। ब्रह्मा जी भगवान, ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, क्या कहते हैं, यत वाक, वाणी से, मन से और शरीर से जिनने आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है उनके ऊपर आपको अनुकंपा करनी ही पड़ेगी, नो चॉइस, आपके आपकी चॉइस का मतलब नहीं बनता, आपको करनी ही पड़ेगी। तत्ते अनुकंपा, अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्म कृताम विपाकम, अपने कर्मों का बुरा फल चाहे वो भोगवता हो लेकिन फिर भी अगर उनने यत वाक मनोभीर, वाणी, मन और शरीर से, वपु विदतो नमस्ते, आपको प्रणाम किया है तो उनके ऊपर आपको अनुकंपा करनी ही पड़ेगी। और भगवान करते हैं, वंदनम, वंदन करना चाहिए भगवान को हर रोज प्रणाम जितना भी हो सके। हमारे व्रज में दंडवती परिक्रमा चलती है, दंडवती, दंडवत प्रणाम, एक दंडवत से भगवान इतने खुश, तो दंडवती परिक्रमा लगाओगे वृंदावन की और गोवर्धन महाराज की, कितने भगवान खुश हो जाएंगे। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम सखाभाव अर्जुन दास्यम हनुमान जी दास्य, अर्जुन जी का सखाभाव दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, बलि महाराज ने आत्मनिवेदन किया, ये नवडा भक्ति में से कोई भी एक प्रकार की भक्ति आप करो, आपका कल्याण हो जाएगा। श्रवणम भक्ति कल्याण, कीर्तन भक्ति कल्याण। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जप में तो तीनों भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो ये भक्ति का नौ प्रकार है। कोई भी प्रकार से आप भक्ति करो। और भक्ति के छह लक्षण हैं, याद रखना और लिखो। भक्ति के छह लक्षण हैं शुद्ध भक्ति के। शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? शुद्ध भक्ति की परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, बाहर ये पुस्तक मिल रहा है, बहुत सुंदर पुस्तक है। भक्ति का विज्ञान, भक्ति के बारे में जो भी जानना हो, भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी लिखा, उनने परिभाषा की है शुद्ध भक्ति की। शुद्ध भक्ति की परिभाषा है अन्या विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। अन्या अभिलाषा शून्य, कोई भी अभिलाषा नहीं। एक अभिलाषा श्री कृष्ण को कैसे मैं सुख दूं, एक अभिलाषा। तम सुखे सुखी त्वम, त्वम दुखे दुखी त्वम इति प्रीति लक्षणम। भगवान को कैसे सुख मेरे से हो, ये प्रीति का लक्षण है। तो अन्या अभिलाषिता शून्यम, शून्य कोई अभिलाषा नहीं। ज्ञान कर्माद अनावृतम, ज्ञान और कर्म, ज्ञान योग कर्म योग सबको छोड़ छाड़ के, ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलन। भगवान को जो अनुकूल है उनका अनुशीलन करना, भगवान की सेवा उनको जैसे प्रसन्न, उनको जैसे पसंद है वैसे करनी, अनुकूल भाव से। गोपियों ने अनुकूल भाव से सेवा की, कंस ने प्रतिकूल भाव से सेवा की, स्मरण किया भगवान का। स्मरण कंस को 24 घंटा रहता था, स्मरण भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण भक्ति कंस की, लेकिन प्रतिकूल, यह शुद्ध भक्ति नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, ये उत्तम भक्ति है। तो ये उत्तम भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। और उत्तम भक्ति के छह लक्षण हैं। जब आप उत्तम भक्ति करने लगते हो तो ये छह लक्षण आपकी आपके जीवन में आके रहेंगे। ये भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, पहले पुष्ट पे, फर्स्ट पेज, वेरी फर्स्ट पेज, छह लक्षण शुद्ध भक्ति के। क्लेश अग्नि शुभदा, भगवान की भक्ति क्लेश को मिटाती है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक क्लेश सब दुख को दूर करती है। क्लेश अग्नि शुभदा, सादरानंदी, शुभदा मतलब हमारे जीवन में शुद्ध भक्ति शुभ लाती है, हमारा जीवन शुभ बन जाता है, परम पवित्र जीवन बन जाता है। मीरा सूर ऐसे भक्त शुभ, प्रभुपाद जी शुभदा सादरानंदी। और शुद्ध भक्ति हमारे जीवन में आनंद का सागर लाती है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद का वर्धन करती है हर पल प्रतिपदा शुद्ध भक्ति। अगर ये आप आपके जीवन में नहीं देख रहे हो तो आप भक्ति नहीं कर रहे हो। सादरानंदी विशेषात्मा सुदुर्लभा, श्री कृष्ण भगवान सब कुछ आपको देंगे लेकिन इनकी भक्ति नहीं देंगे। भक्ति सुदुर्लभ है, दुर्लभ है इतना नहीं, सुदुर्लभ है। ये देखो सारी दुनिया भौतिक संसार में कितने अनंत कोटि जीव हैं, कई कई जीव हैं, लेकिन भक्त कितने, ज्ञानी ज्ञानी कितने हैं, कर्मी भी कितने हैं, कर्मी से ज्ञानी कितने हैं, ज्ञानी से मुक्ति मुक्त कितने हैं, और उसमें सुदुर्लभ कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त दुर्लभ है, ये भक्ति सुदुर्लभा। भगवान भक्ति आपको नहीं देंगे, क्यों? भगवान भक्ति से बध जाते हैं, भक्ति से बध जाते हैं, भगवान भक्तों से बंध जाते हैं, शुद्ध भक्तों बंध जाते हैं। मारारे छोड़या वैष्णव, मारारे बांध्या वैष्णव छोड़े, वैष्णव बांध्या में नव छूटे रे। अगर भक्त भगवान किसी को बांध देते हैं तो भगवान का भक्त उनको छोड़ सकता है, लेकिन भक्त अगर किसी को बांध देते तो भगवान का बस नहीं चलता। अमरीश राजा मुने अति गुणों वालो, दुर्वासा है मन भंग की दूरे, मन भंग की दूरे। दुर्वासा अमरीश महाराज को मारने के लिए कृत्या पैदा करते हैं। लंबी कथा है, कहां लोग कहते हैं मैं कथा नहीं करता हूं, लेकिन कैसे करूं, समझ दो तब। अमरीश राजा ऑफेंस कोई अपराध नहीं था, एक जल पी लिया व्रत भंग करने के लिए, और जल पीने से व्रत भंग होता है नहीं भी होता है, तो गुस्से में आ गए तो दुर्वासा को चक्र सुदर्शन भगवान ने, तो दुर्वासा ब्रह्मा के पास, शंकर भगवान के पास, विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान कृष्ण भगवान ने कह दिया मेरा बस नहीं चलता, वैष्णव की बात है ये, वैष्णव के पास जाओ, उनकी क्षमा याचना मांगो, वो माफ कर दे तो सही, मेरा उसमें कोई बस नहीं। और एक बार वैष्णव मुने बांधे तो ये बंधन में नव टूटे रे। एक बार अगर वैष्णव मुझको उनके हृदय में बांध देते हैं तो मेरा बस नहीं चलता, मैं बंध जाता हूं। सूरदास कहते हैं वृंदावन में आए, सूरदास जी अंधे थे तो कुआ में गिरने वाले थे, सूरदास हाथ पकड़ के भगवान उनको बचा लेते हैं, और बाद में भगवान हाथ छोड़ के चल जाते हैं, चलने वाले थे, तो हाथ जैसे छोड़ा तो सूरदास कहते हैं मैं आपको पहचान गया हूं, हाथ छुड़ाकर जात हो निर्बल जान हो मोही, लेकिन मेरे हृदय से आप जाओ तो मैं सबल जान हूं सोई, आप बलवान तब हो जब मेरे हृदय से। तो भगवान को जब बांध लेते हैं भक्त, भगवान का बस कोई नहीं चलता, ये प्रेम की गांठ है, प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। उदो बंदगी तेरे बस की, प्रेम तेरे बंदगी मतलब भक्ति, भक्ति मतलब प्रेम, ये बंदगी तेरे बस की, ये ज्ञानी भक्त ज्ञानी है उद्धव, बंदगी यहां सर देके होते हैं सौदे, सर देके होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, 16 माला करने सस्ती नहीं है, 16 माला करनी ही चाहिए, 16 माला करना कितना काम कड़ा काम, आप 8 घंटा 12 घंटा काम करते हो, हाँ चल माला करने का कोई नियम नहीं है, चल के करो, सोते करो, लेटे हुए करो, बैठे हुए करो, कैसे भी करो, लेकिन 16 माला करो, 24 घंटे में 16 माला होनी चाहिए, 24 घंटे में। हरिनो मार्ग छे सुरानो नहीं कायरनु काम जोने, प्रथम पहला मस्तक मुखी वर्ती लेवु नाम जोने। हरि का मार्ग सुरवीर का होता है, सुरवीर लोग जो होते हैं सोलह माला वाले सुरवीर हैं। हरिनो मार्ग छह सुरानो नहीं कायर नु काम, कायर का काम नहीं है उसमें। प्रथम पहला मस्तक मुखी वर्ती ले वो नाम जो ने, पहले पहले शीश शीश का समर्पण करना है, बाद में नाम। हरे कृष्णा 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 हरे, राम राम हरे हरे। सुदुर्लभ है भगवान की भक्ति, सुदुर्लभ है। भगवान आपको सब कुछ देंगे ताकि भगवान खुले रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन जैसे भी भक्ति आपको दी भगवान बंध जाएंगे, आपकी प्रेम की दोरी से भगवान बंध जाएंगे। इसलिए भगवान अपनी भक्ति कभी नहीं देते, भाग्यवानों को ही देते हैं। अगर सोलह माला करने वाले नहीं है, यहाँ नहीं करोगे आप, तो आप भाग्यवान नहीं हो निश्चिंत रूप से। सोलह माला क्यों, कि यही एकमात्र उपाय, दूसरा कोई उपाय। सब चीटिंग चीटिंग करने वाले सब प्रचारक आ जाएंगे, आपको जड़ी बूटी दे देंगे, आपको कुछ गोल्ड दे देंगे, राख देंगे, कुछ एसिस दे देंगे, कुछ कुछ सब कुछ दे देंगे, आपका रोग मिटा देंगे। भवरोग कहाँ मिटा, ये भवरोग मिटाने की औषधि एक ही है, हरे नाम एव केवलम। हरे कृष्णा भव औषधि सोत्र मनोविरामात, ये भव औषधि है, सुदुर्लभ। भगवान की भक्ति सुदुर्लभ है। मोक्ष लघुता कृतम, भगवान की भक्ति का लक्षण हम बता रहे हैं। भगवान की शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है, कि मोक्ष को लघु बना देती है, गौण। मोक्ष लघुता कृतम कैवल्यम नरकायते, कैवल्य मुक्ति नरक जैसी, नरक में जाना और कैवल्य मुक्ति पाना एक ही बात है। कैवल्यम नरकायते द्वादश पूर्व आकाश पुष्पायते, ये स्वर्ग भी आकाश के पुष्प है, गोलाब्दी। मोक्ष लघुता कृतम, और आखिरी है भगवान शुद्ध भक्ति क्या, कृष्णा आकर्षिणी च, शुद्ध भक्ति भगवान श्री कृष्ण को भक्त की ओर आकर्षित करती है। भगवान दौड़ते हुए भागते हुए भगवान की ओर पहुंचते हैं, भक्तों की ओर पहुंचते हैं। गरुड़ आया नहीं, भगवान ऊपर बैठे नहीं और भागे हैं। गजराज गजने कारण पावड़ो रे धायो संतोनी करवा सार रे, गजराज हाथी उनने कमल का फूल से, वो घड़ियाल जो मगरमच्छ था, ये कथा है, कथा में करता नहीं हूँ, समय नहीं, आप समय देते नहीं हो। तो गज गज ने नाम से भगवान को पुकारा, तुरंत भगवान दौड़ते हुए आए हैं। एक प्राणी के लिए भगवान भागते हैं, एक एक प्राणी एलिफेंट। तो ये है भगवान की शुद्ध भक्ति, क्या कृष्ण आकर्षिणी च, शुद्ध भक्ति भगवान को भक्त की ओर आकर्षित करती है। भगवान हमारे सनातन गोस्वामी के लिए भगवान खुद मूर्तिमंत प्रकाशित हुए, मदन मोहन, और अपने उनके हाथ से हर रोज खाना, ऐसा नहीं कि मूर्ति पत्थर है, उनके हाथ से खाना हर रोज। लंबी कहानी, समय है नहीं, अब 12 बजे तक 3 बजे तक बैठो तो सारी कहानियां कहूं। हर रोज भगवान सनातन गोस्वामी के हाथ से बाटी का भोग लगाते थे, तो भगवान आकर्षित होते। भगवान चोबी का ब्राह्मणी थी, तो उनको कहते हैं मैं आपके पास अभी ये रागानुग भक्ति आप करती हो, मैं आपके पास रहना नहीं चाहती हूँ, मैं मुझको प्यार है आपसे, लेकिन मैं सनातन बाबा के साथ जाऊँगा, पास जाऊँगा। और मूर्ति मतलब कि मदन मोहन सनातन गोस्वामी के पास साथ गए, चलते हुए गए। भगवान आकर्षित होते हैं भक्तों से, शुद्ध भक्ति से। समय बहुत हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट वाइंड अप कर ले हम, और कल ये थोड़ी सी बात करेंगे। तो भक्ति के रस हैं, माधुर्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, दास्य रस, साख्य रस, दास्य रस, शांत रस, 5 रस है। माधुर्य रस, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस और शांति रस। ये रस से हम संबंध भगवान से कर सकते, भक्ति के रस है। तो देखो कहाँ ज्ञानी शुष्क वेदांति ब्रह्म ज्योति में जाएगा और लटकता रहेगा, वापस आएगा, और जो पापी है नरक में जाएगा, जो ब्रह्मलीन होना चाहता है, जो पुण्य करता है स्वर्ग में जाएगा, और जो देवों की उपासना करता है देवों के धाम में स्वर्ग में जाएगा, देवों के भूत की उपासना करता है भूख के भूत के पास जाएगा, पितरों की उपासना करेगा पितृलोक में जाएगा, और भगवान की उपासना करेगा तो गोलोक वृंदावन। कहाँ जाएगा? और वहां क्या पाएगा? भगवान का प्रेम पाएगा, माधुर्य। और ये प्रेम ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो सोचो, आप ध्यान करोगे या ब्रह्म ज्योत ब्रह्म या परमात्मा को, या हमारा डेस्टिनेशन अलग अलग, अलग अलग आध्यात्मिक जीवन जीने वालों का डेस्टिनेशन अलग अलग है। भगवान कहते हैं भागवत गीता में, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानी यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम। देवों की पूजा करने वाले देवों के लोक में स्वर्ग में जाएंगे, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाएंगे। गोस्ट गोस्टली हॉन्टेड होते हैं ना लोग, भगवान कह रहे हैं भागवत गीता में, श्लोक है, भूतानी यान्ति भूतेज्या पितृन यान्ति पितृव्रता, पितृओं की उपासना करने वाले पितृलोक में जाएंगे, और यान्ति मध्याजिनोपि माम मेरी उपासना करने वाले मुझको पाएंगे, गोलोक वृंदावन में आएंगे, गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन में जाना है, उनकी टिकट एक है, क्या? हरे कृष्णा हरे सोला माला। प्रभुपाद जी का ये नियम है, प्रभुपाद जी कहते हैं जो 16 माला करेंगे, 4 नियम करेंगे, तो अगर कुछ भी कमी रह गई तो मैं गोलोक वृंदावन के पीछे वाले दरवाजे खड़ू रहूंगा, आप पीछे से चले आए, मैं खोल दूंगा। प्रभुपाद जी का ये वचन है, कृष्ण भगवान का वचन है, योग क्षेमम वहामि हम, कुछ भी लैकिंग होगा उनकी योग क्षेम की रक्षा मैं करूंगा, ये कृष्ण भगवान का कॉल है। लेकिन आपको कम से कम इतनी चीज करनी है, 4 नियम और 16 कौन सा मंत्र? गोलोक वृंदावन पहुंच जाओगे। आइए कथा को विराम देते हैं, समय थोड़ा सा ज्यादा ले लिया आज, तो आगे वाला प्रोग्राम आगे बढ़ाएं।